आपको पता ही है कि उन्होंने अपने जो फिल्मी करियर है उसमें बहुत सारे ऊंच नीच देखे हैं, कभी सक्सेस कभी नहीं। तो वो आज उन्होंने एक बड़ा मेजर इंटरव्यू दिया है जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि इंडस्ट्री के अंदर ऐसे लोग हैं कि जो बड़ा खुश होते हैं जब मेरी 4 से 5 फिल्में फेल हो जाती हैं, लेकिन मेरे वालिद साहब ने भी और बिग बी ने भी मुझे यही कहा था कि काम करते रहो। जब उनसे पूछा गया कि भाई आप जो है ये इतनी ज्यादा एक साल में फिल्में क्यों करते हैं, एक साल में एक या 2 सालों में एक फिल्म क्यों नहीं करते हैं, तो उन्होंने कहा जी इसकी क्या गारंटी है कि 2 साल में अगर मैं एक फिल्म करूंगा तो वो फिर उसके बाद वो कामयाब चलेगी वो फिल्म। तो इसलिए आपको जितना भी काम मिले आपको करना चाहिए और उसी के ऊपर मैं बिलीव करता हूं। और मैं नए आने वालों को भी कहता हूं कि आपको बहुत सारे लोग बहुत डिस्करेज करेंगे, लेकिन आप ऑडियंस के ऊपर विश्वास करो, वो उनको अगर आपका काम अच्छा लगेगा तो आपको काम मिलेगा और आपका काम चलता रहेगा। तो आप काम से पीछे कभी भी मत हटो। आज जनाब एक फिल्म आई है ककूडा, ककूडा जो है उसके अंदर हैं जनाब रितेश देशमुख और सोनाक्षी सिन्हा। लेकिन अब वो ये होता है कि इंडियन फिल्मों में जो एक ट्रेंड चल जाता है ना, फिर उसी पे फिल्में बनती हैं। अब वो हॉरर कॉमेडीज बन रही थी तो उसी के ऊपर चल रहा था, पहले स्त्री बनी फिर भेड़िया बनी, बड़ा वो क्लिक कर गई, 100 करोड़ जो है वो खासतौर पर जो एक फिल्म आई थी मुंजिया वो क्रॉस कर गई। तो उन्होंने कहा जी कि अब यही बनाएंगे। सेम डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार जो हैं उन्होंने कहा जी मैं फिर से एक और भी हॉरर कॉमेडी बनाऊंगा ककूडा, लेकिन ये बुरी तरह से बैठ गई है। इसके बारे में कहा गया है जी कि ये बस एक क्रीपी सी फिगर जो है वो फिरती रहती है, बिल्कुल स्केरी और स्पूकी नहीं है ये मूवी, और जो है स्क्रीन प्ले बहुत डल है और इवेंट्स बड़े बिजार हैं और कोई इस फिल्म का इम्पैक्ट नहीं है, इंतहाई थकेली फिल्म है। यानी ये है शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, और जो अंदर की स्टोरीज हैं उनके मुताबिक इनको जो ये 2 मैच सीरीज होने वाली है बांग्लादेश के खिलाफ उसमें से इसको निकाला जा सकता है। एक ऑफिशियल जो है उसने जो पीसीबी से शायद उनका ताल्लुक है उन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि हम सजेस्ट करते हैं कि इसका जो फॉरेन लीग्स के साथ ये खेलने चला जाता है, जो इसको एनओसी दिया जाता है उसको खत्म किया जाए, रिवोक किया जाए, और या फिर इसका जो एक कैटेगरी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन फिर भी जाहिर है कि चेयरमैन नकवी जो है उनके पास फाइनल अथॉरिटी है, वो इसको माफ भी कर सकते हैं। नेशनल कैंप जो है ये जो सीरीज शुरू होने वाली है बांग्लादेश के खिलाफ इसमें इसके लिए शुरू हो रहा है इस्लामाबाद में फ्रॉम August 6। रेड बॉल कोच जो है जेसन गिल्स भी, उन्होंने कहा जी कि ट्रेनिंग मैं खुद सुपरवाइज करूंगा। मीडिया से बात करते हुए कराची में उन्होंने कहा जी कि अब आपको कुछ नए शाहीन जो है वो टेस्ट क्रिकेट में नजर आ सकते हैं और इन न्यूर फ्यूचर, और बेइंतहा वो टैलेंटेड हैं एंड दे आर ईगर टू प्ले एट द हाईएस्ट लेवल। तो वो अब आपको नए बच्चे शायद नजर आएंगे। जेम्स एंडरसन 41 एज है उनकी, उन्होंने जनाब आज रेड बॉल क्रिकेट को कहा खुदा हाफिज टाटा बाय बाय एट द फर्स्ट टेस्ट बिटवीन इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज। इंग्लैंड ने ये इनिंग्स विन की 114 रन से ये जो है ये गेम विन की एट लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। एंडरसन जो थे उन्होंने 4 विकेटें ली फाइनल टेस्ट के अंदर, और जो है जिस वक्त ये लास्ट टाइम वॉक करके फील्ड से जा रहे थे तो उनको बहुत अप्लॉड किया दोनों टीम्स ने भी। इन्होंने ली हैं 704 विकेट्स और मोस्ट बाय एनी सीमर इन रेड बॉल। ही हैज द थर्ड मोस्ट विकेट्स आफ्टर शेन वॉटसन 708 उन्होंने ली हैं, और मुरलीधरन ने 800 विकेटें ली हैं। तो बहुत सारी दुनिया जो है क्रिकेट की उससे इनको जो एंट्रीब्यूट्स आए थे इंक्लूडिंग बाबर आजम एंड सचिन तेंदुलकर एंड मेनी अदर्स। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो है जी उसने बड़ा ही इंटरेस्टिंग बिग बैश लीग का जो सीजन 14 है उसका पूरा स्केड्यूल दिया है जो शुरू हो रहा है 15 दिसंबर से। इसके अंदर 44 गेम्स होंगी और 6 डबल हेडर्स होंगे, और इसका ओपनिंग मैच जो है पर्थ स्कॉर्चर्स वर्सेस मेलबर्न स्टार्स के साथ खेला जाएगा। इसके अलावा इनके कुछ मैचेस जो हैं ओवरलैप भी करेंगे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी सीरीज के साथ, तो फैंस को ऑस्ट्रेलिया में बड़ा मजा आने वाला है। इसके अलावा जो है इनके जो 4 क्लब्स हैं वो आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल वेन्यूज भी मैचेस ऑर्गेनाइज कराएंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान ने डिफीट किया फर्स्ट सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज को बाय 20 रन्स। एज अ रिजल्ट दे हैव रीच्ड द फाइनल्स। ये मैच हो रहा था काउंटी ग्राउंड इन नॉर्थहैम्पटन में, इन्होंने सेट किया था 199 रन का टारगेट। वेस्ट इंडीज ने जीता था टॉस और पाकिस्तान को पहले बैट करने का कहा था। पाकिस्तान का स्टार्ट अच्छा नहीं था क्योंकि उसने 3 बैटर शर्जील खान, शोएब मकसूद एंड शोएब मलिक बगैर कोई रन किए आउट हो गए थे। उसके बाद यूनुस खान और कामरान अकमल ने 77 रन का पार्टनरशिप बनाया। अकमल आउट हुए 46 पे ऑफ 31 बॉल्स। शायद अफरीदी 1 पे गए, मिसबाह उल हक 0 पे गए, लेकिन यूनुस ने बनाए गट्सी 65, आमिर रहीम और सोहेल तनवीर ने भी 61 रन का पार्टनरशिप बिल्ड किया। यामीन जो है उन्होंने स्कोर किए 37 ऑफ 17 बॉल्स, तनवीर ने 33 ऑफ 17 बॉल्स। एडवर्ड्स जो है वेस्ट इंडीज की तरफ से उन्होंने 3 विकेटें ली, सुलेमान बेन ने 2, जेरोम टेलर, ड्वेन स्मिथ ने 1-1। और अब जो दूसरा मैच है वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के खिलाफ है एट द सेम वेन्यू। अभी मुझे हमें पता नहीं चला कि इसका क्या रिजल्ट आ रहा है, लेकिन जो फाइनल है वो अब कल खेला जाएगा एग्बेस्टन में, बर्मिंगम में। तो ये एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट कार्लोस अल्कराज। ही हैज रीच्ड फॉर द सेकेंड टाइम टू इन विम्बल्डन फाइनल और इन्होंने बीट किया डैनियल मेडवेडेव को इन 4 सेट्स। इसके साथ साथ नोवाक जोकोविच जो हैं उन्होंने भी बीट किया लोरेंजो मुसेटी को इन अदर सेमीफाइनल और अब ये फेस करेंगे डिफेंडिंग चैंपियन कार्लोस को ऑन संडे। और ही इज जस्ट अबाउट 1 विन अवे टू गेट द रिकॉर्ड 25th ग्रैंड स्लैम टाइटल। पायान ये है। तो ये जो टीम हमारी खेल रही है लेजेंड्स लीग, इसी को खिलाते हैं यार।
और मैं इसमें अपडेट दे देता हूँ, इंडिया ने 86 रन से जो है वो हरा कर
टाई
कर लिया।
तो फाइनल इंडिया पाकिस्तान के बीच में।
बिल्कुल ऐसे।
ओ माय गॉड, तो कल घर में कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ मैच देखा जाएगा। ओ माय गॉड, ये क्या खबर सुनाई है आपने?
मैंने आपको ब्रेक, देखिए
ब्रेकिंग न्यूज़। ओ बॉस, हम आपको ऐसे ही मतलब, तो कहते हैं ना बॉस,
आपको पता है खबरें
बॉस
क्या बोलूं, थैंक यू
बॉस। बॉस क्या बात है बॉस, ये तो बहुत बड़ी
फाइनल। देखिए अब वीकेंड हो गया मतदान का, फाइनल भी होगा सॉकर का।
ओ यस,
जो है वो मेरी टीम फाइनल खेल रही है। तो वो आपकी टीम जो है वो नहीं पहुंची कोई भी?
नहीं नहीं,
आपने तो
मैंने तो कोई प्रिडिक्शन ही नहीं दी थी।
आपने दी थी, अब देखेंगे आपने दी।
अच्छा, अब आमिर जो है ना कोशिश करेगा मुझे फंसाने की। अच्छा, तुम इससे पहले जो है ना तुम टॉप ऑफ द आवर ले लो, फिर मुझे आके फंसाते रहना।
ऐसा करते हैं टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक,
फिर आके फंसाते रहना,
वरना हमें ब्रेक मिल जाएगा। तो ऐसा करते हैं टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक ले लेते हैं। जनाब हम कहीं नहीं जा रहे हैं, आपके साथ 9 बजे तक हैं। गर्मा गर्म खबरें इन्होंने सुना दी है, कोई ठंडी खबरें हम सुना देंगे, तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आप अगर हमारे साथ जुड़ सकते हैं 416-620-1778 हमारा नंबर है, इस नंबर पर डायल कीजिए और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपने कोई बात हमसे शेयर करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, या अगर आपने कोई नात कलाम या कवाली सुननी है, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-620-1778। चलें जी, टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक लेते हैं और प्रोग्राम में वापस आते हैं।
यू आर लिस्निंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
ब्रैम्पटन सड़कां फुटपाथां अते बस स्टॉप दे सर्दियां दे रख रखाव दे कॉन्ट्रैक्ट दा नवीकरण करन जा रहा है अते ए जानना चाहुंदा है कि शहर दे निवासी इन्हां सेवावां दा भुगतान करन लई तैयार हन। परिणाम स्वरूप निवासियां दे लई टैक्सेस वध सकदे ने, पर सारियां परिवारां नूं इह सेवा दा लाभ नहीं मिल सकदा। सारे फुटपाथां नूं साफ करन लई सालाना $2.6 मिलियन दा खर्चा आउंदा है, $12 हर परिवार नूं इन टैक्स कोस्ट एवरेज पवेगा। ड्राइवे तों बर्फ साफ करन लई इस दी कीमत $19.6 मिलियन प्रति साल होवेगी। ते अपने सुझाव देण लई अज ही विजिट करो brampton.ca/engage।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक ल्यू थ्रू आउट ऑन्टेरियो, नो अपॉइंटमेंट नीडेड, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक ल्यू 519-622-0660 quicktruckloop.com।
अलहुदा इंस्टीट्यूट कनाडा पेश करता है वेस्टर्न कनाडा टूर 2024 विद डॉक्टर फरहत हाशमी एंड डॉक्टर इदरी जुबैर। ये टूर 29 जून सैटरडे के दिन कैलगरी से शुरू होगा और 14 जुलाई संडे के दिन सरे वैंकूवर पर खत्म होगा। इस टूर की मुकम्मल मालूमात के लिए कॉल 6473884595 6473884595।
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है?
क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773 ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
770 AM ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਸੁਣਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਤੋਂ ਬਾਖਬਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਪ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ eawaz.com, ਲੋਕਲ ਨੰਬਰ 6478724900।
ਚਾਂਦਨੀ
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 ਚਾਂਦਨੀ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ,
ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਚੋਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ, sound system innovations, Chandni Banquet Hall.
30 years of hospitality experience, corporate event, exhibition, expo or any celebration.
Sare package ka naam, Chandni Banquet Hall. Aaj hi call kijiye 437-218-8734, chandnihalls.ca.
यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही प्लानिंग फॉर वेकेशन।
हवाई टिकट की कीमतें तो आसमान को छू रही हैं।
अरे मेरे लिए कोई डील तो देखो।
और मशीन के बजाय रिप्रेजेंटेटिव से बात करें।
है ना एयरविंग ट्रेवल, होलसेल रेट, पाकिस्तान, इंडिया और मिडल ईस्ट, एवरीवेयर वेयर यू वांट टू ट्रेवल।
एक्सीलेंट एक्सीलेंट।
पर्सनलाइज्ड ट्रेवल सॉल्यूशंस, अफोर्डेबल, इजी एंड डिस्काउंटेड एयरफेयर्स।
Airwing Travel and Tours, 905-272-2300,
905-272-2300.
ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, जहां आपको मिलेंगे मजेदार खाने जैसे कि लाहौरी गोट कड़ाही, शिनवारी गोट कड़ाही, निहारी, हलीम, पाए, बिरयानी, सीख कबाब, चिकन टिक्का, शवरमा, पिज्जा और मजेदार लाहौरी छोले, पालक पनीर और बहुत सी वेजिटेरियन ऑप्शंस। ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, वही देसी अंदाज और वही देसी जायका। 1310 दंदा स्ट्रीट ईस्ट, मिसिसागा, यूनिट 3। ऑर्डर नाउ, कॉल 416-526-6800।
दांतों का कोई भी मसला हो या करानी हो डेंटल क्लीनिंग, डॉक्टर फयाज एंड एसोसिएट्स आपकी पहली चॉइस। Paradontics, orthodontics, dental implant, cosmetic dentistry and much more. Warm and friendly atmosphere, जहां आप अपनी जबान में अपनी तकलीफ बयान कर सकते हैं। आपके पास डेंटल इंश्योरेंस है या नहीं, कोई मसला नहीं। स्कारब्रो में एक और मिसिसागा की दो लोकेशंस पर आपको सर्व करते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए अभी कॉल कीजिए 905-232-5678 मिसिसागा, 416-757-9999 स्कारब्रो।
क्या आपकी फैमिली में मसाइल चल रहे हैं और हालात आपको लेके जा रहे हैं डाइवोर्स की जानिब, या आपका प्यारा बिना विल लिखे या विल लिखकर आपको छोड़ के जा चुका है? विल के मुतालिक कोई भी काम हो या आपको चाहिए ट्रस्टीशिप सर्टिफिकेट, या आपकी रियल स्टेट क्लोजिंग नजदीक है और आप हैं एक तजर्बेकार लॉयर की तलाश में, इन तमाम कामों के लिए आपकी मदद के लिए एक बाएतमाद इदारा, मलिक लॉ ऑफिस, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स। मोहम्मद अतीक मलिक आपकी तमाम कानूनी मसाइल में आपकी रहनुमाई करेंगे। जीटीए में दो लोकेशंस, मिसिसागा 168 क्वीन स्ट्रीट साउथ यूनिट 201, इन स्कारब्रो 1825 मार्कम रोड यूनिट 205। कॉल टुडे मलिक लॉ ऑफिस 9052914559 9052914555।
कहते हैं कि माया को खींचे माया कर कर लंबे हाथ। हैरी सॉन द मेजेस्टिक मॉर्गेजेस के साथ रेजिडेंशियल कमर्शियल मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग आपने करनी है, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है, सारे बैंकर्स और लेंडर्स के साथ डीप ताल्लुक आता है इनके, आपको फाइनेंसिंग का बंदोबस्त भी हो जाएगा और चार्जेस भी कोई नहीं देने पड़ेंगे। हैरी सॉन जी बड़ी कमाल की तिकड़म लड़ा सकते हैं, बस आप कॉल कर लीजिए और पैसे का रेंज हो जाएगा $228 से $1000 महीना कैसे बचा सकते हैं। कॉल हैरी सॉन Now 6472281000 Harry Sond of Majestic Mortgages।
इन सब कामों के लिए तो मुझे बैक होम ही जाना पड़ेगा।
कौन से काम?
वही बेटे की शादी सर पर है और ज्वेलरी का खास काम अभी तक नहीं हुआ।
बस इतनी छोटी सी बात। पायल ज्वेलर्स पे सब किस्म की ज्वेलरी है और वो स्पेशलाइज करते हैं इन सब में ही, दुबई, सिंगापुर, इंडिया, पाकिस्तान और यहाँ की तमाम लेटेस्ट ज्वेलरी।
मुझे उनका एड्रेस बताओ, मैं आज ही ये काम जाके करवाती हूँ।
जी जी बिल्कुल, पायल ज्वेलर्स का एड्रेस है 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव यूनिट 42 ब्रैम्पटन। Pyle Jewelers, call करें 9057907879, that is 9057907879।
पाई सस्ता ला ला, इंज कर तू 6 दी बजाय 5 ले ला। ओहो सरला भैन जी, कैनेडा आ गए तुसी, इत्थे सब्जियां पिछे बारगेन करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि एशियन फूड सेंटर ते वधिया फ्रेश ग्रोसरी, फ्रूट्स, दाला, सब्जियां सब कुछ बहुत घट कीमत विच मिलदा।
ए आ जी एशियन फूड सेंटर, इंडो कैनेडियन ग्रोसरीज, फल फ्रूट, दाला, सब्जियां दी वन स्टॉप शॉप। नाले साडे कोल इंडिया वाले भांडे, प्लेटां, बाटियां सब कुछ मिलदा। साडी सारियां ही लोकेशंस ते सोहणियां सोहणियां रखड़ियां दी बेशुमार वैरायटी भी है। एशियन फूड सेंटर दियां ओंटारियो विच 9 लोकेशंस विचों जिथे मर्जी आ जाओ।
एना सोना कर लिया, हुन अप्लायंसेस भी स्टेनलेस स्टील दे ही चाहिए।
हाँ जी, स्टेनलेस स्टील दे अप्लायंसेस मिलेंगे तानू ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस ते, जिथे फ्रिज, स्टोव, डिशवॉशर, थ्री पीस किचन बंडल, इसो अलावा फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर, एनर्जी सेवर, एनर्जी स्टार, फिर टीवी सेक्शन इच सोनी, सैमसंग, पैनासोनिक, शार्प, हर साइज से हर ब्रांड दा टीवी विद द लोएस्ट प्राइसेस इन द टाउन, सिर्फ ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस ते। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 Bowie Drive West Brampton, या कॉल करो 9054502828 905-450-2828।
आयशा ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो?
घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए।
10 जगह क्यों? एक ही जगह है फातिमा ग्रोसर्स।
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स, मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी। ग्रोसरी का सारा सामान ताज़ा आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी। मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर न्यू फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड, वेस्ट ऑफ मिसिसागा, 9058487000। फातिमा ग्रोसर्स, सबसे जबरदस्त।
विलेज टेस्ट पूरे ऑन्टेरियो का सबसे बड़ा हलाल सुपर रेस्टोरेंट है। कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, बारबेक्यू ट्राई करना चाहते हैं, कढ़ाई आइटम्स हैं एंड स्वीट्स एंड फ्रूट्स में बे इंतहा वैरायटी है। बेहतरीन फीस्ट एंजॉय कीजिए विलेज टेस्ट पे। आफ्टर मिसिसागा दे आर इन ओकविल एज वेल। विलेज टेस्ट 9052323663। विलेज टेस्ट।
वेलकम बैक, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम साज़ो आवाज 770 AM डायल पर। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आमिर अहमद, और मेरे साथ एज यूजुअल जुड़ गई हैं शाज़िया मलिक साहिबा। अब से लेकर रात 9 बजे तक हम और आप साथ साथ हैं, और शाज़िया जी को प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। कुछ रिसर्च वर्क उनका चल रहा है, अब मुझे लग रहा है कोई अंदर की खबर जो है वो आई है, तो उनसे पूछते हैं कि अंदर की खबरें जो हैं वो क्या हैं। शाज़िया जी वेलकम बैक।
थैंक यू आमिर। उफ, मैं जो है ना इतना मैं थक गई हूँ, मत मैं क्या बताऊँ।
8 से 10 न्यूज पढ़ी है।
हाँ
वो थक गई।
अच्छा 8 से 10
आप बोले वो
अच्छा 8 से 10 थी ये
12 कर ले।
अच्छा 12 थी।
अब ये नहीं बोलिएगा 100 थी।
30 न्यूज आइटम्स थे पाईजान।
देखें उसमें से आइटम निकालें और सिर्फ न्यूज रखें, कितने बचे? 10 या 12, 20, बहुत मैं खींचता हूँ, चले 15 न्यूज होंगी, बाकी सब आइटम है,
बाकी सब ड्रामे थे,
सब आइटम था।
अच्छा अच्छा, आइटम सॉन्ग थे।
मैं तो सिर्फ बस आपकी जो न्यूज होती है
हाँ।
वो मैं सुनता हूँ शौक से।
हाँ,
हाँ। आइटम तो देखने का आइटम।
अच्छा, तुम्हें जिस दिन से बॉस कहना शुरू किए ना, तुमको ज्यादा ही जो है ना ऊपर की हवाओं में होना चाहिए। आमिर नीचे आ जाओ, ऊपर से गिरोगे ना, मड़ी से ज्ञान हो तुम, गिरोगे तो बहुत चोट आएगी।
बॉस बॉस मतलब मैं जो है ना वो डेजिग्नेशन पे बिलीव नहीं रखता।
हाय हाय हाय, मिलेगा तो मजा तो बड़ा आएगा।
कभी भी नहीं, मैं हर डेजिग्नेशन।
ये तो वही बात है ना, वो जो उसने इमरान हाशमी ने कही है बाजी के बारे में, उसने कहा ना ये मैं तो अवार्ड्स अवार्ड से बिलीव नहीं करती। इमरान हाशमी ने कहा तो मिल तुम्हें कह रहे हो, तुम्हें मिल नहीं रहे तो इसलिए तुम कह रही हो, तो इसीलिए तुम्हें भी कोई ज्यादा भाव नहीं दे रहा, कोई और तो तुम्हें बॉस कहता नहीं है मेरे बगैर, हैं सिर्फ मैं कह रही हूँ। तो अब जाहिर है कि अब तुम्हें फिर जो है तुमने तो यही बातें करनी है ना। मैं
नहीं,
तो
मैं डेजिग्नेशन पे बिलीव ही नहीं, टाइटल बिल्कुल, टाइटल से मेरा बिलीव ही
नहीं। वो जिस वक्त टाइटल के साथ लाख डॉलर की सैलरी आती है ना, फिर बंदा बहुत बिलीव करता है।
फिर वही बात हो गई, टाइटल से बिलीव नहीं रखता,
पैरों में रखता हूँ
भाई। आप प्यून लिख दो उसके आगे मेरी टाइटल।
प्यून क्या होता है? ये प्यून क्या है?
पीएन पीएन पीएन
पीएन
पीएन कह लें चले, पीएन हम वो गुलशन वाले सब क्या है,
प्यून
गुलशन वाले।
अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है सर, कोई नहीं।
तो पीएन होता है हमारे, आपका प्यून होता है?
नहीं, आपका प्यून होता है, मैंने आपकी करेक्शन कराई है कि प्यून नहीं होता, पीएन होता है।
पीएन होता है,
हाँ जी।
तो आप मेरे टाइटल के आगे चपरासी लिख दें चले, ऐसे।
अच्छा ठीक है,
आई डोंट केयर।
अच्छा, लेकिन लाख डॉलर मिलने चाहिए,
एंड रिजल्ट अच्छा होना चाहिए।
अच्छा होना चाहिए,
हमेशा एंड रिजल्ट पे फोकस रखें।
ओए होए होए,
मेहनत करते रहे।
हाँ।
वो कहते हैं ना, मेहनत कर हसद ना कर।
वैसे विशाल जो है ना, जो तुम्हारे पे जो कैमरा नहीं लगता ना तुम्हारी एक्टिंग पे, मुझे हैरत है कि वो तुम्हारी एक्टिंग पे कैमरा क्यों नहीं लगता है।
वो चाहता है कि मेरी इज्जत बरकरार रहे।
ये जो तुम्हारी एक्टिंग है ना, तुम्हें मैंने एक दिन पहले भी कहा था, खुदा के लिए नौटंकी कंपनी में जाओ, तुम प्लीज जाओ, तुम इतना कोई पैसा कमाओगे, इतना पैसा कमाओगे के बस क्या है। उधर भी तुमने डायरेक्टर्स को डायरेक्टर्स को अपने आगे लगाया होगा, है नहीं? डायरेक्टर साहब, आपकी ये लाइन ठीक नहीं है, ये जो आपके जो राइटर ने लिखा है ये ठीक नहीं है, ये इसको हम ऐसे कहेंगे और हम ऐसे करेंगे।
मैं जब भी ड्रामा किया, कुछ किया, तो वो मैं आई जस्ट फॉलो द स्क्रिप्ट।
अच्छा, इधर जो रोज ड्रामे करते हो उसमें तो तुम फॉलो नहीं कर रहे स्क्रिप्ट,
क्योंकि आपने खुद ही का बॉस तो आपको फॉलो करना है।
नहीं नहीं, आपने आपको फॉलो करो। हाँ,
आपने फॉलो करना है ना।
हाँ,
मैं तो नहीं, मैंने तो नहीं, मैं तो टाइटल पे मैंने का बिलीव ही नहीं है।
हाँ,
मजदूर मैं अक्सर लोग मुझे कहते हैं जी क्या है जी, मजदूर आदमी।
अच्छा अच्छा,
यस एंड आई लव टू डू मजदूरी।
अच्छा अच्छा,
दैट्स इट, सिंपल आदमी,
बिल्कुल
सिंपल,
कोई कोई तुम्हारे जैसा सिंपल, जिलेबी की तरह का सिंपल और सीधा।
यस
यस,
इतने तो मतलब मैं नखरे बर्दाश्त हो, ये आप लोग आपकी होता है ना कि यार अभी जैसे आपने 12 खबरें सुनाई, 30 38 पता नहीं क्या कह रही थी, उसमें से आप आइटम निकाले, कितने बचे थे अभी?
अच्छा अच्छा, ये जो तुम्हारी सिंपलिसिटी है ना, ये हमें खाने के टेबल पे नजर आ जाती है। भिंडी नहीं खाऊंगा, कद्दू नहीं खाऊंगा,
सिंपल आदमी, सिंपल खाना खा,
सिर्फ चिकन खाऊंगा, गोश्त खाऊंगा, बीफ की हलीम खाऊंगा, बीफ की निहारी खाऊंगा, और ये जो है ये नहीं खाऊंगा मैं,
इसलिए मैं प्रोटीन खाता हूं, कार्ब्स नहीं खाता, सिर्फ रोटी।
अच्छा, हर बात का वैसे जवाब है तुम्हारे पास, है ना? कभी गुरूर नहीं किया।
देखिए, अच्छा लगता है जब दूसरे आपकी तारीफ करें ना, क्वाइट गुड।
हाँ, तो
मैं बोलूंगा मैं खूबसूरत आदमी हूँ, कुछ तो आप बोलेंगे तू बड़ा अपनी तारीफें की है।
हाँ, तो यही बात है ना,
आप खुद ही कर रहे हो तो इसमें ठीक है, वही करे जाए, आई डोंट माइंड।
अच्छा अच्छा, चलो एक प्यारा सा कलाम लगाओ।
कलाम लगा लेते हैं अभी प्रोग्राम में, और
एक सवाल भी छूट देते हैं,
एक सवाल भी छोड़ लेते हैं, और आज जो माहौल है
गर्म है,
गर्म हुआ भाई,
काफी गर्म है,
उस पर भी खबरें तो आपने सुना दी है।
हाँ,
बहुत अच्छी थी आपकी खबरें, वैसे
ऑन द
सीरियस नोट बहुत ही आप अच्छी खबरें लेकर आती हैं हमारे तमाम सामईन के लिए, वो सुनते नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन आपकी खबरें बहुत अच्छी होती है और बाकी मेहनत भी करती हैं उस पर, तकरीबन आप 8 घंटे जाया करती हैं उसके ऊपर 5 मिनट के काम पर, तो आई रियली एप्रिशिएट, मतलब आई ऑलवेज सपोर्ट यू, यू नो,
बिल्कुल
ऑन एयर में ये बात,
आप बिल्कुल मेरे पीछे खड़े हैं, मजे थे,
आई ऑलवेज सपोर्ट यू एंड आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू एज वेल।
अच्छा,
तो टेंशन ना ले।
अच्छा,
तो ये जो गर्मा गर्मी शुरू हुई है, पाकिस्तान में ये हवाएं जब तब्दील हो रही
है, हमारे मुल्क में भी काफी गर्मी,
और यहाँ भी गर्मी गर्मी माहौल हो गई, पूरी दुनिया में वैसे गर्मी चल रही है,
गर्मी चल रही है काफी ज्यादा।
इस पर कुछ थोड़ा वो अपनी टिप्पणी और रोशनी डालें,
ट्यूबलाइट से डालें रोशनी,
टॉर्च से डालें।
अच्छा अच्छा,
ये जो हालात आज मेरे ख्याल से 8-5 के आगे पीछे हो गया, 8 लोगों ने कहा है कि भजन इसको रिजेक्ट कर दें, मतलब वो पास कर दें, सही है अपील, और 5 लोगों ने कहा है, जिसमें 5 में हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब शामिल हैं। तो वो कैसा लगता होगा शाजे जी, एक आदमी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है और वो उस तरफ है जहां माइनॉरिटी हुई है और फैसला जो है हाथ से निकल जाए, तो क्या कुछ ईगो हर्ट या को, क्योंकि आप भी कवर तो करती रही होंगी आप सुप्रीम कोर्ट की,
कवर मैं कोर्ट की स्टोरीज में कवर नहीं करती थी, लेकिन जो लड़के कवर करके आते थे ना वो स्टोरीज हमारे वहाँ पे कोर्ट को जो कवर करते थे।
फैसले पे बताइए कि क्या तब्दीली रुनुमाई होगी आने वाले वक्तों में,
जाहिर है
क्या 39 लोग क्या क्या कोई इम्पैक्ट डालेंगे?
बिल्कुल डालेंगे ना, बिल्कुल डालेंगे, इनको जो इनका हक था वो मिलेगा इनको। असल में बताइए क्या बात है, असल में इट्स नॉट द मैटर ऑफ पीटीआई और पीपीपी पीएमएल, इट्स द मैटर ऑफ अ कॉमन मैन, जिसने वोट डाला था ना आपने उस कॉमन मैन की बेइज्जती की है, यानी कि यानी अच्छा सोचें, ये एक मुल्क है ठीक है, कनाडा फॉर एग्जांपल, कनाडा में 35 मिलियन लोग हैं, आप कहते हैं जी 40 मिलियन हो गए हैं, 40 मिलियन में से 30 मिलियन ने आमिर को वोट दिया है और जो है 10 मिलियन ने शाजिया मलिक को दिया है, लेकिन शाजिया मलिक ने 2 नंबर काम करके, धांधलियां करके, आमिर के जो है वो सारे बैट का वो सिंबल लेके, उसको जो है वो उसकी पार्टी खत्म करके, उसको वो करके सारे का सारा जो है, और फिर अलायंसेस बना लिए और गवर्नमेंट बना लिया। अब आप कहेंगे ना, आप जो आम जनता है वो कहेगी ना कि आम भाई हमने तो वोट आमिर को डाला था सारे का सारा, है ना, 30 मिलियन ने वोट आमिर को डाला है, 10 और वो गवर्नमेंट नहीं बना सकता, उसको जो है खुडे लाइन लगाया हुआ है, और जो 10 मिलियन जिसने शाजिया मलिक को दिया, शाजिया मलिक जी गवर्नमेंट बना के बैठ गई है। तो ये इट्स नॉट द मैटर ऑफ नाउ द पॉलिटिकल पार्टी, इट्स रिस्पेक्टिंग द कॉमन मैन्स राइट टू वोट, है ना, कि उसने किसके लिए वोट किया है, जो किसने किसके लिए
वोट को इज्जत दो वाली जो बात है।
तो आप खुद कह रहे थे कि वोट को इज्जत दो, फिर आपने वोट को इज्जत तो दी नहीं, आपने तो फिर 2 नंबर तरीकों से जो है वो मिल मिला के ऐसे करके,
वजीर कानून साहब भी कह रहे थे कि अभी ये पूरा नहीं है चीज़ें,
और इसके अंदर बहुत सारा झोल है, और ये
है
क्योंकि जाहिर है वो तो गवर्नमेंट के बंदे हैं ना,
जब हो गया मैं खास पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, अब कहीं ये चैलेंज तो नहीं हो सकता, या हमारे यहाँ क्या सेटअप होता है, कोई चैलेंज हो सकता है आप
करेंगे ना जी, उनसे उनसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है ना वजीर आला, फिर वजीर आला से ऊपर जरदारी साहब हैं, जरदारी साहब से ऊपर
बात करें,
नहीं कानून का है,
कोर्ट से ऊपर तो कोई कोर्ट नहीं,
नहीं 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 नहीं, आपको किसने कहा है, तो कैंगरू कोर्ट है, आपको किसने कहा है कि ये कोर्ट जो है ये तो बड़े, आज उन्होंने इसके जो, अब मुझे क्या खतरा लग रहा है, मुझे ये खतरा लग रहा है कि आज इन्होंने जो पीटीआई को की जो एज अ पार्टी रिलीफ दी है ना, अब ये और जो है ना स्क्रू टाइट कर देंगे इमरान खान के।
अच्छा
हाँ, तो वो अब जब इमरान खान के स्क्रू टाइट करेंगे ना, तो और किसी ने अगर आवाज उठाई तो वो कहेंगे देखो जी अदालतें तो सारी आजाद है, पहले भी हमने कितने केसेस में इमरान खान को छोड़ा है, ये जो पिशावर हाईकोर्ट का हमने रिवोक करके तुम्हारे हक में दिया है, तो अब अगर इमरान खान को हम अब टाइट कर रहे हैं तो तुम लोग कह रहे हो जी अदालतें सही नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो ये एक तरफ से उनको जरा हौले हौले रिलीफ दे रहे हैं और दूसरी तरफ से लीडर को जरा टाइट कर देंगे ये लोग,
लेकिन
तो मुझे ये डर लग रहा है, मुझे ये
अभी भी असेंबली में मेरे ख्याल से इनकी 200+
209 है ना,
209 हो गई है, तो अभी भी जो वो जो नो कॉन्फिडेंस वाला सेटअप है
वो तो नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन इनकी सीटें बढ़ने से ना ये जो असल में एग्जैक्टली इंडिया वाली अब सिचुएशन हो गई है, जैसे पिछले 2 दफा से मैसिव तरीके से मोदी जी जीतते थे तो मुंह जोरी उनकी चलती थी, ऑपोजिशन तो मरी बैठी थी ना, बिल्कुल उसको तो वो शड़प कॉल देते थे, जो मर्जी कर रहे हैं, जो मर्जी बिल पास करा रहे हैं, जो कर, तो अभी भी यही चल रहा था, मुंह जोरी चल रही थी ना, ओ जी पीपीपी भी साथ है, एमक्यूएमपी हमारे साथ है, फलाने हैं टमकाने हैं, जो मर्जी हम करेंगे। नाउ द ऑपोजिशन जस्ट लाइक वहां पे इंडिया अलायंस वो अब मजबूत हो गई है, इसी तरह अब पीटीआई मजबूत हो जाएगी तो अब इनको ज्यादा मनमानी नहीं करने देगी, एग्जैक्टली इंडिया पाकिस्तान का सेम सेटअप हो जाएगा, एग्जैक्टली वही हो जाएगा।
आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले जरदारी साहब के कुछ बयान आ रहे थे, उन्होंने काफी इशारतन बात की कि जनाब हम जो है वो हुकूमत अगर बना सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं, ठीक है ना, और वो पंजाब भी पहुंचे हुए थे, उसके बाद जो है
घर खरीदा उन्होंने पंजाब में, वो अब अपनी पार्टी को वहां पे मजबूत करना चाहते हैं, घर खरीदा लाहौर में उन्होंने।
फिर दूसरी तरफ जो है वो जावेद लतीफ साहब जो हैं, उनका बयान आ जाता है जनाब,
जी
जरदारी साहब के उस पे कि जनाब आपके बनाने करने से कुछ नहीं होगा, ये सेटअप जिसने किया है इत्यादि, अगर वो जब तक वो सेटअप को नहीं वो करेंगे
माई बाप,
हाँ तो उस वक्त तक जो है कोई भी इत्यादि जमात हुकूमत से अलग नहीं होगी, यानी जो सारा सेटअप अरेंज किया है
माई बाप जो है
एस्टेब्लिशमेंट का अपना,
जिसको हमारे प्याज भाई पिंडी बॉयज कहते थे,
वो पिंडी बॉयज इस्लामाबादी है, वो खैर
पिंडी बॉयज
जाने आप जाने, लेकिन वो कहते हैं कि जी इतना आसान नहीं होगा, मतलब वो जरदारी साहब को लगा रहे थे। तो आपको ऐसा लगता है क्योंकि आप जरदारी साहब ना हमेशा जो है ना वो
फायदे की तरफ देखते हैं,
फायदे की तरफ देखते हैं, ही इज वेरी वेरी वेरी
बिग गेमर, गेमर गेमर गेमर
पॉलिटिशियंस, मतलब उनको पता है क्या करना है किस वक्त कैसे।
इसको पॉलिटिक्स नहीं कहते, आपको पता है कि किसी जमाने में पॉलिटिक्स को कहते थे पॉलिटिक्स इज अ जेंटलमैन्स गेम, राइट। ये पॉलिटिक्स जो है ना, ये अब जो जरदारी साहब करते हैं ना, वो जेंटलमैन्स गेम नहीं रही है, वो गंद है, वो गंद मतलब है, जिस तरफ आपने जो है ना वो देखा कि पावर में हम आ सकते हैं ना, बस उसके साथ आपने जो है जाके बैठ जाना, यानी कि वो जैसे हमारा पंजाबी में कहते हैं ना, जिथे देखी परात उत्थे कटी रात, यानी कि जिसकी तरफ हमने देखा कि खाना ज्यादा है ना, उसके घर जब में हम जाके रहेंगे।
मैं बहुत ही हम्बल हम्बली इस बात से मैं थोड़ा डिसएग्री यूं करूंगा, हम क्योंकि हम कराची की बात करते हैं,
कराची
कराची की बात करते हैं, क्योंकि जाहिर है मैं उस एरिया रहा हूं तो उसकी बात करता हूं। एमक्यूएम एक पार्टी होती थी, ठीक है ना, सबसे पहले थी ये महाजिर कौमी मूवमेंट पार्टी, कराची से जीत जाते थे। अच्छा, इनका क्या होता था, दे डोंट केयर के फेडरल में हुकूमत जो है वो नवाज शरीफ साहब की आए या बेनजीर साहिबा की आए, ये हमेशा जो है ना विनिंग पार्टी की तरफ जाते हैं। तो अच्छा होता है क्या, इस तरह की जो पार्टियां होती है, आप अब मैं कहूँ इस पे हम ये भी कह सकते हैं कि भाई ये तो इनका कोई ना दीन है ना ईमान है, ये तो जो जीते, देखिए उनको पता होता है कि पावर पॉलिटिक्स की ही वजह से, जो पावर में लोग हैं पावर पॉलिटिक्स में जुड़कर ही हम अपने मुतालबात और अपनी चीजों को मनवा लेंगे। कभी भी ऐसा होता है कि मैं बोलूं कि यार
दैट इज कॉल्ड अलायंस, दैट इज नॉट, दैट इज नॉट कॉल्ड कि आप एक अलायंस में ऑलरेडी हैं, उनको धोखा देते हैं,
पावर अलायंस में ही जाते हैं ना हमेशा, वो कभी लूजर अलायंस में तो बहुत,
लेकिन जरदारी साहब का जो आपने बात बोली है ना, वो इस वक्त TMLN के साथ अलायंस में,
नहीं नहीं देखें उन्होंने कहा कि हम हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन हम जो है वो
धमकियां है ना,
उसका हिस्सा हम नहीं, ठीक है ना, हम नून लीग के साथ नहीं है, हम सिर्फ हुकूमत के साथ हैं। कल को उनका कहने का मतलब है कल को हुकूमत किसी की भी होती तो हम हुकूमत को बचाने के लिए हम इंडिविजुअल को, इसीलिए आपने देखा कोई वजारते वगैरह ऐसी काबीना का हिस्सा वो नहीं बने। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर इशारा होता है, कहीं सिग्नल दिए जाते हैं, क्योंकि जरदारी साहब ही हैं इस वक्त जो नून लीग की गवर्नमेंट को कंधा देकर या कहते हैं कि कमर देकर खड़े में, अगर जरा से भी उन्होंने अपना कंधा हल्का सा भी झुकाया तो इनको टेंशन हो जाएगी। और मुझे आने वाले 6 महीने या 8 महीने ऐसे अंदाजा अगर हम करें इसको, क्योंकि हमेशा जरदारी साहब ने कहीं ना कहीं वो जो एक उनका एक स्टाइल है पैचअप का, और वो कहते हैं ना कि यार मिलकर काम करने का या मिल बांटकर आगे बढ़ने का, वो इमरान खान के साथ भी चल सकेंगे।
लेकिन क्वेश्चन तो यही है कि क्या इमरान खान भी उनके साथ चलना चाहेगा या नहीं, दैट इज द क्वेश्चन,
चलेगा,
दैट इज द क्वेश्चन,
चलेगा, आप देखिएगा आने क्यों। देखिए शाजी जी, इमरान खान बहुत से लोगों को पसंद है, सबको, मुझे, मैं भी कहूं कि यार मैंने भी इमरान खान, मैंने एक वोट लाइफ में जब पाकिस्तान था तो डाला था, वो मैंने पीटीआई को डाला था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जाहिर है मेरा कोई वो नहीं था, ठीक है यार कोई लगा था कि उस वक्त आएगा बंदा कोई अच्छी काम करेगा नहीं, लेकिन इमरान खान अगर देखें एज एन पॉलिटिशियन, तो पॉलिटिक्स में ना वो जो बात होती है कि जितना मैं एज एन स्टूडेंट पढ़ते हैं कि आपको इतना जिद्दी नहीं होना होता, आप चाहे सामने वाला चोर हो, अभी पूरी दुनिया को देख लेना, वर्ल्ड पॉलिटिक्स देख ले, आप ये नेटो की समिट हो रही है, उर्दगान साहब भी खड़े हैं वहां के, नहीं है वैसे आप जितने इख्तलाफात कर लें अमेरिका से और फला कर लें,
लेकिन ये
लें।
लेकिन ये तो
कॉमन इंटरेस्ट होते हैं ना,
हाँ नहीं नहीं, लेकिन ये तो दिस इज एन अलायंस ऑफ वर्ल्ड पावर्स,
मैं वही कह रहा हूँ,
अगर आप फ्रांस में देखें या आप इंग्लैंड में देखें या आप जर्मनी में देखें, तो जो फार राइट की पार्टीज है ना, वो फार राइट की फार लेफ्ट से बहुत ही फार होती हैं, हर किसी के अपने स्टैंस होते हैं। देखिए ना, पॉलिटिक्स के अंदर जिस वक्त तक आप कांग्रेस चलो दूर नहीं जाते, यूरोप को छोड़े आप, यूरोप वाले तो बहुत ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, दे हैव ग्रूम्ड देयर सिस्टम्स और खुद भी बहुत ज्यादा, उनके ऊपर फिर किसी दिन बात करेंगे। अगर आप फ्रांस पे, क्योंकि मैंने इनका ये सारा ये यूरोपियन हिस्ट्री में पढ़ती थी, आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री, तो मैंने इनके ये सारे ये जो थे इनके रेवोल्यूशन एंड जो भी कुछ उनके ऊपर बाद में कभी बात करेंगे। लेट्स गो टू इंडिया। इंडिया में आप देखें, इंडिया में ये तीसरी दफा कांग्रेस जो है गवर्नमेंट नहीं बना सकी है ना,
बीजेपी आ गई है,
बीजेपी फिर से आ गई है ना अलायंसेज बना के, इस बार तो खैर अलायंस, लेकिन फिर भी आ गई है। जो कोर कमेटी है कांग्रेस की या जो कोर उनके मेंबर्स हैं, उन्होंने बिल्कुल इनको नहीं कहा कि जैसे बाकी लोग अलायंस बना के बीजेपी के साथ बैठ रहे हैं, आप भी अलायंस में आ जाओ, कांग्रेस को भी फायदा आएगा। कांग्रेस सेट के नहीं, हम बीजेपी बेशक गवर्नमेंट में आ रही है उसके साथ हम अलायंस नहीं बनाएंगे, हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। देखिए आप अपना कद जो बड़ा करते हैं ना एज अ लीडर, वो इन चीजों पे करते हैं। आपको पता है कि अभी कल तक वही, जैसे अभी आज भी बेचारा कह रहा था राहुल गांधी, पिछले दो जो थे इलेक्शन उसमें पप्पू, इसको क्या पता है पॉलिटिक्स का, इसको पता क्या पता। अब आप देखें इस वक्त ही इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उसकी जो स्पीच होती है उसको लोग ज्यादा एंडोर्स करते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा सुनते हैं, वो कहते हैं कि ही हैज ग्रूम्ड हिमसेल्फ टू बी अ ट्रू लीडर, है ना। देखो ना, जिंदगी में आपके कुछ ना कुछ असूल पॉलिटिक्स में होने चाहिए। आप ये फ्रांस की चलो अभी हम फिर बात कर लेते हैं कि लपेन वाले जो थे, अगर वो चाहते तो फार राइट या फार लेफ्ट की जो पार्टीज थी उनके साथ मिलके एक प्रेशर ग्रुप बना के कर सकते थे। लपेन हारा ना, हारने के बावजूद जो पार्टी है या मैक्रों साहब जो हैं, वो जो पार्टी जीती है उसके साथ मिलकर, क्योंकि अपने लोगों के असूल हैं, लोगों की अपनी आइडियोलॉजीज हैं। हमारे मुल्क में सिर्फ ये गंद है कि जो गवर्नमेंट है उसके साथ हम आके बैठेंगे ताकि हमें भी मिनिस्ट्रियां मिलें। दुनिया ऐसे नहीं चलती। ये इनको केयर स्टार्मर को देखें, इनकी जो लेबर पार्टी है, लेबर पार्टी कभी भी अगर वो हार रही होगी तो वो ये नहीं कहेगी कि चलो जी ठीक है हम अलायंस में गवर्नमेंट बना लेते हैं ताकि जी हमें भी कुछ मिनिस्ट्रियां मिल जाएं। नहीं, वो कंजर्वेटिव पार्टी बिल्कुल अलहदा खड़ी रहेगी, लेबर बिल्कुल अलहदा खड़ी रहेगी, छोटी पार्टियां जो हैं वो भी छोटी रहेंगी, वो अलहदा खड़ी रहेंगी, वो गवर्नमेंट का ऐसे करके नहीं बन। हर दुनिया के जो जो आपका जिंदगी का मसला है ना, जिंदगी का कोई भी आपका स्पेक्ट्रम है आप देखें, उसमें मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल 100% कुछ असूल जो है ना उनके ऊपर जब तक आप खड़े नहीं रहेंगे आपकी इज्जत नहीं।
100% एग्री।
मैक्रों हैज लॉस्ट इन फ्रांस,
यस,
स्टिल ही इज नॉट रेडी टू सिट इन अलायंस विद देम, राइट। ही सेज हिज पार्टी, ही हिमसेल्फ हैज अ डिफरेंट आइडेंटिटी।
बिल्कुल ठीक।
उसमें मैक्रों साहब की जो लेगेसी है ना, इसीलिए लोग उसको फिर अब याद रखेंगे, उसको फॉलो करेंगे।
जो आप बात कर रहे हैं, आपकी बात से 100% एग्री। जो दुनिया की वर्ल्ड पॉलिटिक्स इसी पर चलती है, और उसूल पर ही फैसले होने चाहिए, सही या गलत उसूलों पर होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की डायनेमिक्स बहुत डिफरेंट।
हम तो थाली के बैंगन है ना, थाली के बैंगन है।
हम बचपन
में कुर्सी चाहिए, हमें कुर्सी
चाहिए, कुर्सी भी चाहिए,
कुर्सी चाहिए।
क्योंकि अगर इतना आपको था कि यार आप पावर में नहीं है और आपने वाकई चेंज करना था, तो अगर फर्ज कर लें मैं लीडर, मैं बहुत उसूली बंदा, अगर आपने आप बोलूंगे भाई शाजिया जी मैं तो बस उसूल के खिलाफ जाऊंगा ही नहीं, तो अगर मुझे जरा सा भी उसूल के खिलाफ कोई चीज अगर दिखेगी तो मैं स्टेप डाउन कर जाऊंगा। और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में होता भी ऐसा ही है कि बड़े बड़े वजीर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट स्टेप डाउन होते हैं। हमारे यहाँ को ऐसी रिवायत है।
हाँ, लेकिन नॉट अंडर अनड्यू प्रेशर, है ना। जैसे कि अब ये प्रेशर जो है, ये अर्दोगान साहब को भी आए थे कि भाई तुम स्टेप डाउन करो। उसने कहा मैं क्यों स्टेप डाउन करूं, आई हैव वन द इलेक्शन, लोगों ने मुझे इलेक्शन दिए हैं, लोगों ने मुझे वोट किए हैं, मैं उनके सेंटीमेंट के साथ नहीं खेल सकता, राइट। तो आपको जब अनड्यू जब आपको प्रेशर आ जाएगा ना, फिर इस वक्त आप देख लो नतन्याहू के ऊपर कितना प्रेशर है,
वो तो नहीं,
कितना प्रेशर है उसके ऊपर ना, उसको उसके अपने लोग कह रहे हैं कि तुम हॉस्टेजेस वापस नहीं लेकर आ सक रहे हो, तुम छोड़ो। वो कह रहे हैं कि भाई मैं क्यों छोड़ू, मैं जीत के आया हूं। तो अनड्यू फेवर तो कोई लीडर दुनिया का नहीं मानेगा।
देखिए
लेकिन गलत तरीके से, जैसे कि अगर कोई, जैसे नतन्याहू के ऊपर तो अब करप्शन के भी चार्जेस हैं, लेकिन इसी तरह अगर किसी के ऊपर करप्शन के या दूसरे चार्जेस आ जाते हैं एंड दे आर प्रूवन इन कोर्ट, फिर आपकी मॉरल इंटेग्रिटी ऐसी होनी चाहिए क्या। अच्छा, अयूब खान साहब के खिलाफ हम बहुत अगेंस्ट उसके बोलते हैं कि जी उनकी वजह से डेमोक्रेसी मुल्क में खराब हुई, हालांकि तरक्की बहुत हुई थी अयूब खान साहब के जमाने में, लेकिन आपने एक गलत सिस्टम मुल्क के अंदर सेटअप किया ना, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को आपने खराब किया। लेकिन आप देखें, फिर भी दो पैसे के असूल थे उस बंदे में। جس وقت ان کو لگا کہ پورا پاکستان اب میرے خلاف ہو گیا ہے, انہوں نے کہا جی اوکے فائن آئی ایم اسٹیپنگ ڈاؤن فرام مائی پوزیشن, رائٹ. اس طرح تو اگر تو کیونکہ ان کے بیٹے جو ہے گوہر ایوب صاحب کی وجہ سے, ان کی وجہ سے آپ کو پتا کافی ہیٹ جنریٹ ہو گئی تھی ملک کے اندر, تو اس لیے تو مجھے نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو, ایم کیو ایم پاور جہاں دیکھتی ہے اس کا ساتھ دے دیتی ہے, تو از اٹ گڈ پالیٹکس, آئی ڈونٹ نو.
یہاں گڈ اور بیڈ کی دیکھیں ہوتا کیا ہے, دیکھیں پاکستان میں اصول تو ہر ایک پارٹی کے اپنے اپنے, ہر لیڈر کے اپنے, اگری 100%, لیکن آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی اگر آپ نے پالیٹکس میں رہنا ہے تو آپ نے پاور میں بھی رہنا ہوگا. اب آپ نے راہل گاندھی کی ایگزامپل دی نا, دیکھیں راہل گاندھی اور میں ایک کمپیئر کروں کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی نا, یگ بلڈ مین, انہیں پتا ہے کہ یار یہ تھرڈ ٹائم کیا فورتھ ٹائم بھی وہ اگر بی جے پی آتی ہے تو وہ ہیز انف ٹائم کہ میں,
لیکن اس کی جو پارٹی کے بندے ہیں نا جو کانگریس کے اندر چدمبرم وغیرہ وہ تو بوڑھے ہیں نا,
لیکن کہنے کا مطلب ہے جو نیکسٹ پرائم منسٹر ہوگا, ایگزامپل لے لیں, اگر ہم دوسرے اینڈ پر جاتے ہیں ایون زرداری صاحب کو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے, اور نواز شریف صاحب کو لے لیں, ایون عمران خان کو اگر آپ لے لیں جو کہ پرائم منسٹر کے ظاہر کینڈیڈیٹ اپنی پارٹی کے حساب سے, تو اب جو میں بات کر رہا تھا کہ زرداری صاحب اور عمران خان کیوں نہیں بات کر سکتے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے اصول, آپ نے یہی کہا کہ اصول ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں میچ کر رہے, دیکھیں بہت ساری,
نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ اصول ایسے تھے, میں نے کہا اصول زندگی میں ہونے چاہیے, میرا صرف کوشچن یہ تھا کہ کیا عمران خان صاحب بھی زرداری کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں,
میں یہ کہوں گا کہ بیٹھنا چاہیے.
ہاں آپ یہ کہہ رہے ہو کہ بیٹھنا چاہیے,
میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ کو ایز اے پولیٹیشینس ہر ایک کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے, یہ میرا پوائنٹ آف ویو. اگر میں کہوں گا نہیں میں عامر احمد اور میں شازیہ جی سے بات ہی نہیں کروں گا, جبکہ شازیہ جی کا بھی اپنا ایک ووٹ بینک ہے, اگر 10 لوگ مجھے پسند کرتے ہیں تو 10 لوگ شازیہ جی کو بھی پسند کرتے ہیں, شاید 12 لوگ پسند کرتے ہوں گے, اور میں کہوں گے نہیں جی بس جو میرے 10 لوگ ہیں نا وہی سب سے اچھے ہیں, اور باقی جو شازیہ جی کو 10 لوگوں نے یا 5 لوگوں نے 8 لوگوں نے یا جتنے بھی لوگوں نے ووٹ دیا ہے پسند کرتے ہیں وہ اچھے نہیں. تو میرا جو ماننے کا وہ بات شروع کی تھی ہم نے یہاں سے کہ جب آپ اتنے اس لیول پر آ جاتے ہیں نا, پھر آپ ایج وائز بھی دیکھیں, اگر عمران خان کی سیاسی بات کروں تو اب آپ بولیں کہ نہیں یار یہ چور ہے میں اس کے ساتھ بات نہیں کروں گا, یا فلاں چور ہے اس کے ساتھ بات نہیں ہوگی, تو پالیٹکس میں آپ کو بات کرنی پڑے گی, پھر فائدہ کون اٹھا لیتا, پھر وہ جو آپ بات کر رہی تھی کہ وہ جو تیسری قوت ہے جس نے جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ جس نے سیٹ اپ کیا ہے شاید جی, پھر وہ فائدہ اٹھاتی ہے. جب ہم فرض کر لیں ہم ایک گھر میں رہتے ہیں, اگر ہم آپس میں فرض کرنے میں آپ ذیشان ہم سب آپس میں یہاں ہیں, اگر ہم یہاں پر ایک ایز اے صحیح طریقے سے آپس میں لڑتے رہیں کام نہیں کریں گے تو اس کا فائدہ کوئی دوسرا اٹھاتا ہے. ایگزامپل دے رہا ہوں, جیسے اپنے گھر میں ہی چار لوگ اگر مل کے کام نہیں کریں گے کچھ نہیں کریں گے تو دوسرا فائدہ اٹھاتا ہے.
لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کی اپنی آئیڈیالوجی ہے, پی ایم ایل ایم کی اپنی آئیڈیالوجی ہے, پی ٹی آئی کی اپنی ہے, باقیوں کی اپنی ہے, لیکن ان کو وین اٹ کمز ٹو ڈیموکریسی ان کو اکٹھے ہو جانا چاہیے تاکہ ملٹری پھر بار 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 انٹرفیئر نہ کرے.
اصل پوائنٹ یہی,
اصل میں یہ ہے کہ آپ اپنی آئیڈیالوجی پارلیمنٹ میں آپ لڑتے رہے, پارلیمنٹ میں لڑتے رہے, لیکن جس وقت یہ بات آئے کہ جی اب تم لوگ لڑ رہے ہو بہت تو ملٹری آئے گی, پھر تم تینوں کو اکٹھے ہو جانا چاہیے.
پیچھے 70 سالوں میں یہی ہوتا رہا
کہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی بک جاتی ہے ان کے ہاتھوں,
آپ جو ہیں وہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بھائی آپ کو مجھے شاہد جی کی چار باتیں پسند نہ ہو, یا آپ بولو یار مجھے عامر کی 3 باتیں پسند ہوں, لیکن جو 2 باتیں میری آپ کو اچھی لگتی ہیں جیسے کہ میں خوبصورت ہوں یہ دوسری چیز ہے, تو آپ اس پہ تو ایگری کریں.
سینٹی یہی ہوتی ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں پھر جڑ جائیں, بولے جی نہیں ہم لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں پولیٹیکل سیٹ اپ ہم نے چلانا ہے, ملک ہم نے چلانا ہے, آپ آرام سے بیٹھو ذرا, آپ آرام سے بیٹھو. تو اگر یہ ایسا کریں گے نا آپس میں بے شک لڑتے رہو, لیکن پھر وہی آپ تو خیر ڈرتے ہو تیسری قوت دوسری قوت کہتے ہو, میں تو خیر نام لے لیتی ہوں ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو پھر کہنا چاہیے کہ بھائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ والوں بیرکس میں بیٹھو آرام سے چین سے بیٹھو, ہم معاملات جو ہیں چلا لیں گے ملک کو بھی چلا لیں گے باقی چیزیں بھی چلا لیں گے.
پولیٹیشین اگر آپ اپنی عزت خود نہیں کریں گے تو دوسرا بھی نہیں کرے گا,
ہر وقت جا کے ملٹری کی گود میں بیٹھ جانا,
دنیا بھی نہیں کرے گی آپ کی. جو جتنے وہ کہتے ہیں نا کہ انکل سیم یا اور دوسرے بڑے جائنٹ کنٹریز جو بیٹھے ہیں سپر پاور کنٹریز, وہ آپ کی کیوں نہیں سنتے, وہ اس لیے نہیں سنتے کیونکہ بتائیے یار یہ تو آپس میں لڑتے ہیں, ان کا تو کوئی دین ایمان نہیں ہے, ایک جو ہے وہ دوسرے کو گالی دیتا ہے, دوسرا تیسرے کو گالی دیتا ہے, چوتھا تو ہم تو بات نہیں کریں گے, پھر وہ بات وہ ون مین, وہ کہتے ہیں نا ون مین آرمی, اس سے بات کرتے ہیں.
جیسے کہ सारे यूरोप में होता है, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ती हैं, उनके आइडियाज भी नहीं मिलते हैं, सब कुछ
लड़ते
हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उनकी लड़ाइयां होती हैं। पर लेकिन मिलिट्री का जो होता है वो मिलिट्री का तो ये वो नहीं होता कि जी हम अब कूद के आ जाए, वो नहीं आते, क्योंकि वो उनको पता है कि ये संभाल लेंगे कंट्री को, ये चलाएंगे, इनका काम है, सिविल गवर्नमेंट का काम है गवर्नमेंट को चलाना।
वो जो एक एटीट्यूड है ना, जो बात शुरू हुई थी वहां से कि यार वो जरदारी साहब को बर्दाश्त नहीं करना, जरदारी साहब ने उसको बर्दाश्त नहीं करना, नवाज शरीफ साहब ने फजल रहमान साहब को बर्दाश्त नहीं करना, वली खान ने इनको बर्दाश्त नहीं करना, अचकजई ने उसको नहीं पूछना, यही बेसिक जो खराबी है,
फायदा वो फिर उठाते हैं,
यही बेसिक खराबी है। और ये इन्होंने पिछले 77-78 सालों में
समझ नहीं
अपने साथ साथ अब अपनी औलादों को भी दे दिया। हालांकि औलादें ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आ गई हैं, कोई कहां से पढ़ के आ गई है, मैं कहता हूं कि कैसी
खुले नहीं
है, किस तरीके के लोग हैं कि यार आप अपने वालदैन को बोले भाईजान सलाम वालेकुम, कर लिया दो तीसरी नस्ल अब आ रही है, मतलब अगर देखें जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, बेनजीर साहिबा, अब बिलावल भुट्टो साहब,
जरदारी साहब बीच में,
मतलब चले जरदारी साहब भी ले लें, मतलब वो एक ही कैटेगरी है ना, कहने का मतलब नस्ल तो
मैं
खानदान कहने का मतलब है, नस्ल कह रहा हूं कि भुट्टो साहब, बेनजीर, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, उधर से भी ले लें, जो भाई नवाज शरीफ साहब, फिर मरियम नवाज, फिर अब इनके नीचे सारी
चीजें, शहबाज बेटा
हमजा कह लें, तो अब आप अपने पेरेंट्स को कहेंगे भैया ना आप लोग घर बैठ जाएं, आपने बहुत इसको चला लिया, अब वो यूथ यूथ की बातें करते हैं ना, तो यूथ को भी चाहिए कि इनिशिएट लें, किस तरह के बच्चे भी, वैसे मुझे समटाइम ऐसा लगता है कि हम बदकिस्मत कौम है कि हम एक अच्छा लीडर नहीं पैदा कर सके, और
चेंज नहीं आ रहा इनके अंदर,
उन्हीं में लगे पड़े हैं, उन्हीं में लड़ रहे हैं आपस में। यार आप मिले बैठे बात करें,
मैं कहता हूँ 10 साल
भी ये मुल्क अगर अंडर पॉलिटिशियन चल जाता है ना किसी, फिर इनका एहतसाब खुद ही हो जाएगा। मैं मेरा ये बिलीव है 10 ईयर्स का एक प्रोसेस है, अगर ये इस पे कोई भी एक चीज चल जाती है ना, इलेक्शन हो रहे हैं टाइम पे, जिस जो जीत रहा है उसको टाइम मिल रहा है, 10 ईयर्स में पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी।
चलो ठीक, एक प्यारा सा कलाम लगाओ।
कलाम लगा दूं?
हाँ, कलाम लगाओ।
बहुत ही सेंटी हो गया था,
बहुत सेंटी हो गया,
दुख होता है बस पाकिस्तान के लिए ना कभी कभी,
इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा,
नहीं इंशाल्लाह सही तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा स्क्रू टाइट करना पड़ेगा। चले जनाब, सॉरी माजर, लंबाई हो गई आज थोड़ी लेक्चर की, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं 416-620-1778
हमारा लाइन खोलो ना, अपनी लाइन जो है खास,
मैं लाइन खोल दी है, लेकिन वो मुझे लग रहा है कि इस वक्त थोड़ा सा एक कलाम लगाने के बाद फिर लाइनें लेना शुरू करते हैं,
ठीक है, चलो ठीक,
ताकि लोगों का भी माहौल जो है थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं कि लोग किस मूड में, लेकिन बहरहाल आप हमें कॉल कीजिएगा, कोई इशू नहीं सर, 416-620-1778। ये एक कलाम, ख्वाजा मेरे ख्वाजा ए आर रहमान की आवाज में, फिर प्रोग्राम में वापस आते हैं।
ख्वाजा है ख्वाजा, दिल में समझा, शाह का शाहू, अली का दुलारा, ख्वाजा है
शाहू का शाहू, अली का अब कह भी दो।
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ।
मगर कब?
अब कुछ कहना वहना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर।
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, नो ऑब्लिगेशन, कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट।
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर, कॉल शिराज 416-792-8792।
रिंगिंग, बजिंग, हिसिंग, टाइम टू गेट योर हियरिंग चेक।
Buy one hearing aid, get one 15% off. 416-792-8792. Ultimate Hearing Solution, 416-792-8792.
कहीं मॉर्गेज नहीं मिल रही, झटपट मॉर्गेज दिला के सारी मुश्किल कर देंगी आसान। 11 साल से ज्यादा तजुर्बा और एक भरोसामंद नाम। हर किस्म की रेजिडेंशियल या कमर्शियल मॉर्गेज के लिए मॉर्गेज अलायंस की जैस्मिन परमार से राब्ता करें। रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस, रिन्यूअल ऑप्शंस, मॉर्गेज डिफिकल्टीज, डाउन पेमेंट इश्यूज, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्राइवेट फंड्स, सेकेंड मॉर्गेज के लिए कॉन्टेक्ट करें मोस्ट ट्रस्टवर्दी जैस्मिन परमार से। नंबर टू कॉल 6479235659, 6479235659, लाइसेंस नंबर 10530।
बटाला सुपर मार्केट, बटाला सुपर मार्केट, हलाल मीट ते सब्जियां नाले फल भी ताजा मिलते, इत्थे मछली अंडे दूध दही ते सस्ते चावल मिलते, मल्ले पकौड़ियां ताजा मिठाइयां गर्म समोसे मिलते, बटाला सुपर मार्केट।
स्कारपुरो दी वाहिद ते मिसाली सुपर मार्केट, बटाला सुपर मार्केट, 200 मार्कम रोड, स्कारपोरो, मार्कम रोड से इंग्लैंडन दा संगम, फोन 416-264-3111।
जी वेलकम बैक तमाम हमें कॉलर आ रहे थे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। नहीं आवाज आ रही। चलें जी शाजी जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक,
थैंक यू।
हमारे साथ एक कॉलर थे, उन्होंने होल्ड किया था, लेकिन जनाब आपके लिए मैं आया था, लेकिन आप जो है वो डिस्कनेक्ट कर गए। कोई बात नहीं जनाब, आप दोबारा कॉल कर लें हमें। 416-620-1778 हमारा नंबर है, और आराम आराम से बात कर लेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम।
जावेद भाई कैसे हो?
बड़े बड़े आज तो यार
फतवे
दे रहे हैं आप।
नहीं अभी तो जरा दिल सहार रहे हैं फतवे दे दे के, इतने देखो मासूम जनता कनेडा दी कहंदे सानू कोई लेना देना नहीं अफगानिस्तान दी वार दा, यूक्रेन दी वार दा, की दुनिया दे विच हो रहा है, पावर्टी है, जा सानू शराब नहीं मिलती पई। इन्होंने और मसले एलबीबीओ जी शटडाउन पड़ा हुआ है, मसूबा तो हो रही मसले।
मैं दसन लगा, मैं पूछने लगा सा अमर साहब ने यार को देसी बनाने का भी तरीका है।
कहां फसा रहे हो?
हां जी देसी बनाने का तरीका बड़ा ही असू दस देने, सिंपल तरीका, अंगूर जड़े ने उन्होंने सड़न वास्ते रख दो बाहर, जिस वे वो पूरी तरह सड़ जाए घर के लिया के उसका जूस कट लो पी लो।
नहीं मैं एक्चुअली सुन रहा था, लेकिन एक चीज आप जो है ना आपने डिस्कस नहीं की, ये जो आज जो पीटीआई को जो सीट मिली है ना
जी,
सर हम कर चुके हैं कर चुके हैं डिस्कस।
नहीं नहीं वो तो ठीक है, जब से मैंने सुना है ना, एक चीज जो मेरे जहन में
सर बताइए
वो ये थी कि जिन लोगों ने पीटीआई का जो है ना बल्ला छीना, फिर उनको आजाद किया, ये किया, ठीक है ना, उनको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देगी, ठीक है ना, और ये फैसला होना था इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी इज्जत बचानी है। अब क्या होगा कि ये जो आजाद है, जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपके पास 15 दिन है आप कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करें, ठीक है, ठीक है ना, या पीटीएफ ज्वाइन करें। अब वो दूसरे जो पावर है जिसे आप जो एस्टेब्लिशमेंट आप कहती है, ठीक है ना, जो भी करता है, अब क्या होना है कि आप पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, समझ गए बात को?
जी जी,
ठीक है ना, और ये गेम जो है ना ऐसे ही चलेगी। अगर ये सारे पीटीए में शामिल हो जाते हैं ना तो फिर गवर्नमेंट चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
हाँ हाँ जी जी बिल्कुल, वही हम कह रहे थे कि ये वही इंडिया वाला सिनेरियो हो जाएगा, ऑपोजिशन मजबूत हो जाएगी बहुत ज्यादा, तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आपने जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात की है ना, वो बिल्कुल मैं उसके नाल इंडोर्स उसको कर रही हूं, क्योंकि आज उन्होंने एक्शन ले लिया है ना उसके खिलाफ, अफजल मरवत दे अगेंस्ट, हो सकता है कि अफजल मरवत जो है वो कोई फॉरवर्ड ब्लॉक उन बनाने की कोशिश करे,
ऐसा होना है।
हाँ।
देखो ना मेरा मतलब है कि उन्होंने भी पता है कि अगर ये सारे पीटीए च आ जाते हैं तो अपोजिशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी।
आहो, आहो, बिल्कुल
हम उन्होंने की किया है कि अपने जड़ा ने की कहते ना ਜੀ ਜਸਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਐਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲ 100% ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ,
ਬਿਲਕੁਲ।
ਫਿਰ ਉਹ ਚੋਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਊਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਣਗੇ।
ਆਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਕਿਤਨੇ ਜੋ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਉਸਮੇ ਰਿਲੀਫ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਸ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੋ ਅਗਰ ਉਸਕੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੇ ਸਕਰੂ ਟਾਈਟ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਿਵੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੋ ਉਧਰ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਿਵੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜੇਗੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰਨਗੇ।
ਔਰ ਅਬ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯੇ ਅਬ ਸਾਰੇ ਜਾਏਂਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ ਮੇ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਦੀ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਕੋ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ
ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ?
ਅੱਛਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਜੇ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਫਸੇ ਹਾਲੇ ਘਰ।
ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ, ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫਸੇ ਹੋਏ? ਜਲਦੀ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਲਾਣੀ ਸੀ?
ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਰ ਵੀ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਕਵੇ ਦਾ ਯਾਰ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਹਿਮ ਲਾ ਦਿਓ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ਥੈਂਕ
ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਵੀਕਐਂਡ, ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਵੀਕਐਂਡ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ,
ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਜਾਵੇਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖਦੇ ਹੈਂ। ਹੈਲੋ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜਨਾਬ, ਆਪ ਵੀ ਕਾਲ
ਵੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਵੇਟ
ਕਰ ਲੈ ਸਰ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਹਮ ਯਹੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਯਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਘੰਟਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਕਾਲਸ ਲੈ ਲੇਂਗੇ, ਹਲਕਾ ਫੁਲਕੀ ਮੌਸੀਕੀ ਕਰ ਲੇਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੈਰੇਕਟਰ ਕੋ ਦੇਖਤੇ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਨੇ ਹਮਸੇ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕਿਸੀ ਕੀ ਵੀ ਕਾਲ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਕਭੀ ਵੀ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਯਾ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ
ਤਮੀਜ਼ ਸੇ ਬਾਤ
ਹੋਗੀ, ਚਲੇ ਇੱਕ ਔਰ ਕਾਲਰ ਲੈ ਲੇਤੇ ਹੈਂ, ਫਿਰ ਹਮ ਟਾਪ ਆਫ ਦੀ ਆਵਰ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਸਰ, ਮੈਨੇ ਯੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਪਕਾ ਨੰਬਰ ਉਠਾਇਆ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਪ ਵਿਦਿਨ 5 ਸੈਕਿੰਡਸ ਕਾਲ ਕਰ ਲੇਂਗੇ ਤੋ ਮੈਂ ਆਪਕੀ ਕਾਲ ਅਭੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਵਰਨਾ ਫਿਰ ਅਬ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਟਾਪ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੈਲੋ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।
ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ,
ਵਾਲ ਸਲਾਮ ਸਰ, ਕੈਸੇ?
ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਠੀਕ ਠਾਕ, ਆਪ ਸੁਣਾ, ਖੈਰੀਅਤ?
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਰ, ਮੈਂ 2 ਦਫਾ ਆਪਕੀ ਕਾਲ ਉਠਾਈ ਥੀ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ?
ਬਸ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਆਜ ਕਾ ਆਪਕਾ ਤਜਜ਼ਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਥਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੋਕਸ ਆਪ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੋਕਸ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜੰਪ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਕਿ ਕਭੀ ਫਰਾਂਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਭੀ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਮੁਲਕ ਸੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਜੋ ਬਾਤ ਹੈ ਵਹੀ ਕੀ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਰੇਲੀ ਯੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਪਨੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਤਜ਼ੀਆ ਕੀਆ ਹੈ,
ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ,
ਆਪਕੇ ਟੌਨ ਕਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ।
ਨਹੀਂ, ਯੇ ਬਟ ਫੋਕਸ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੋ ਇਨਕੋ ਪਰ ਤਨਕੀਦ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੇ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਮੈਂ ਤੋ ਇਨਕੋ ਪਰ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਤਾ ਹੂੰ,
ਬਿਲਕੁਲ।
ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਵੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਜ਼ੀਆ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਫਾਹਮਤ ਵਾਲੀ, ਜਬ ਤੱਕ ਆਪ ਦੇਖੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਵੋ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਤੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਕੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਕੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਹੋ, ਯਾ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀ, ਯਾ ਆਪਣੇ ਲੋਗੋ ਕੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋ ਕੈਸੇ ਮਤਲਬ ਆਗੇ ਮੁਲਕ ਕੋ ਚਲਾਏਗਾ? ਮੁਲਕ ਚਲਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤੋ ਯੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਮਿਸਟਰ 10% ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਵੋ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਤੋ ਚਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਐਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ,